grande sempre bravo di Deze is het is ook niet aan. Dat wil je wel bij de schaaf te komen. Alleen in Krishna, alleen in Krishna. कहा कि उसमें भी मेरे जो भक्त होते हैं उनका उद्धार मैं बहुत तुरंत करता हूं, उसमें टाइम नहीं लगता और मैं पर्सनली करता हूं। और मेरे भक्तों के पास एक स्पेशल फैसिलिटी होती है कृपा की, मर्सी, जो किसी के पास नहीं होती। उनके पास बहुत सारे इसका आपने वो बनाए थे, डिफरेंसेस बनाए थे। उसके बाद फिर भगवान ने कहा कि अब मेरा आदेश सुनो, मैं क्या चाहता हूं। तो भगवान ने पहले बताया मुझ में मन लगाओ, मैं बुद्धि निवेश बोलो, मुझे को अर्पण करो। तो ये पहले नंबर वन बता दिया क्वालिटी। फिर कृष्ण ने सोचा कि अगर ये नहीं कर सकते तो फिर ऑप्शंस बताना शुरू किया भगवान, ये नहीं करोगे तो ठीक है ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये करो। तो भगवान इतने दयालु है कि किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे। अगर कुछ भी नहीं थोड़ा बहुत कर रहे हो फिर भी आपको भगवदगीता में स्थान दे दिया कि भगवदगीता में श्लोक में बताया है ऐसा मैं कर रहा हूं भगवदगीता में आपको। सो चार पांच श्लोकों के अंदर भगवान ने स्टेप वाइज बताए भक्तों के अलग अलग मीन्स हाउ दे कैन जॉइन वन बाय वन स्टेज, ऊपर का स्टेज इस तरह से। और उसके बाद फिर भगवान ने अर्जुन को कहा अब मैं तुम्हें वो बताना चाहता हूं कि जो आठवें नंबर में या कोई भी नंबर में कोई भक्त हो, कौन से ऐसे भक्त है जिनके लक्षण मुझे आकर्षित कर, जो मुझे बहुत पसंद है, या फिर जो भक्त होते हैं उनके लक्षण कैसे होने चाहिए। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है, 13-14 वो आप पढ़िए।
किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझमें मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय।
शुरुआत किया सबसे पहला क्वालिटी अद्वेष्टा। अद्वेष्टा का अर्थ होता है किसी का द्वेष नहीं, और यहीं पर हमारे गाड़ी कट जाती है क्योंकि द्वेष करने का अर्थ क्या होता है कि हम किसी के दुर्गुणों को देखते हैं, फिर उनसे थोड़ा सा ईर्ष्या करते हैं, प्रेजुडाइज करते हैं, इनको हरे कृष्ण बोलने की जरूरत है, वो अपने मार्ग पर हम मारते हैं। तो मन में एक प्रकार का द्वेष करता है, ईर्ष्या, उनको उनको क्यों सब लाभ प्राप्त हो रहे हैं, वो क्यों गुरु जी के पास जाकर बैठ रहा है, वो क्यों टेम्पल अथॉरिटी के पास जा रहा है, उसको कोई उसको परमिशन क्यों दी गई, उसको नहीं परमिशन दे गई, उसको ये क्यों प्राप्त, उसको वो क्यों प्राप्त। तो ऐसे बहुत सारी चीज माइंड में घूमते रहते हैं निरंतर निरंतर। तो ये ईर्ष्या और द्वेष के कारण व्यक्ति जो होता है वो बड़ा परेशान रहता है, और ये भगवान को प्रिय नहीं। अद्वेष्टा भगवान कहते हैं, अद्वेष्टा, किसी का द्वेष नहीं करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अद्वेष्टा भगवान ऐसे किसी भक्त को पसंद नहीं करते जो किसी का द्वेष करते हो, लेकिन प्रभु ये तो स्वाभाविक नहीं, किसी का द्वेष नहीं करना या करना ये तो स्वाभाविक नहीं। स्वाभाविक द्वेष करना भौतिक रूप से स्वाभाविक है, और द्वेष नहीं करना आध्यात्मिक रूप से स्वाभाविक है। अगर कोई सही में भक्त है तो किसी को द्वेष करेगा? आप सोचिए, कोई पिता अपने चार, समझ लो उसके चार बेटे हैं, तो कोई पिता चार में से किसी का द्वेष कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए चारों समान है। लेकिन एक एकदम बंदर जैसा है और एकदम गाय जैसा है, एक पूरा ओबीडियंट है और एक बिल्कुल अभिमानी है, फिर भी माता पिता क्या थोड़ा सा वो चारों को एक रूप से देखते हैं, एक समान देखते हैं, अर्थात उनको स्नेह तो पूरा मिल जाए चारों को। इन अदर वर्ड्स, भगवान के लिए सारे जीव उनके अपने अलग है और वैष्णव के लिए जो भक्त होता है वो सब पर भगवान का परिवार का दृष्टि देता है, भगवान के परिवार से जुड़े हुए लोग, इसलिए किसी को शत्रु नहीं मानता। शत्रु कैसे मान सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का भक्त है या भगवान से जुड़ा हुआ है, तो किसी को शत्रु नहीं मानता हो। विशेष करके भक्तों का शत्रु, भक्त किसी को, एक भक्त दूसरे भक्त का शत्रु नहीं मानता, ये बहुत आवश्यक है। कई बार हमारी जो समस्या बाहर वालों से कम होती है, भक्तों से ही ज्यादा होती है। कई बार देखते हैं भक्त वो बाहर कोई झगड़ा झगड़ा नहीं होता है, कहाँ झगड़ा क्यों होता है, वो तो पता चलता है, यार है यूज टू बी दैट। लेकिन डिवोट इसके साथ होता है ना, वही दिमाग के ऊपर चलता रहता है, इस पर ऐसा कहा था, उस पर ऐसा कहा था, ये पढ़ ये कर, वो ग्रुप ये करता है, ये पढ़ ऐसा कर, तो वही माइंड का अंदर चलता रहता है। तो इसका परिणाम क्या आता है कि हम किसका द्वेष कर बैठे। लेकिन जैसे आज ही किसी ने मुझे मैसेज डाला है, टुडे लेक्चर दे रहा था उसी समय, तो उनका जो प्रश्न ही गलत था, तो मैंने उत्तर ही नहीं दिया। सीनियर बुढ़ी है तो प्रश्न पूछा व्हाट्सएप पर मुझे, तो मैंने उत्तर ही नहीं दिया, निवाल से समय देने में निवाल है, भले क्वेश्चन पूछे क्या क्यों ऐसा, क्योंकि जो प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न हमारे सिद्धांत के आधार से नहीं आ रहा है, तो वाई शुड आई आंसर, मैं क्यों आंसर करूं? तो इसका अर्थ इस भाई ये पॉइंट यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि किसी का द्वेष नहीं कर रहे, नॉट टू हैव एनी ग्रज विद एनीबॉडी। सो Prabhupada says in one of the lectures, तात्पर्य तो पढ़ ही देना बाद में, प्रभु कह रहे हैं कि कृष्ण भावनाम संग जो है वो किस तरह से कृष्ण के प्रिय बनना उसके लिए है, किस तरह से कृष्ण मुझे प्रेम करेंगे, कृष्ण अवश्य प्रेम करेंगे क्योंकि वो ना किसी के शत्रु है और ना किसी के मित्र। भगवान कहते हैं तो समान हूं सबके लिए और उनको समान होना चाहिए, भगवान वो किसी के प्रति द्वेष नहीं करते और ना ही किसी के मित्रता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग मेरे शरणागत होते हैं प्रेम और श्रद्धा के साथ, उनके साथ मेरा इंटीमेट रिलेशनशिप होता है, ये पार्शियलिटी नहीं है। जैसे किसी जेंटलमैन के पांच बच्चे होते हैं लेकिन जो ओबीडियंट होते हैं उनको अधिक वो पिता को पसंद आता है, तो सब भगवान के पुत्र है इसलिए भगवान से कनेक्टेड है और इसके कारण अल्पेष्टा और द एक्चुअल यू वांट टू बी इज अल्पेष्टा नॉन एनवियस। फिर प्रभुपाद ने एक और एग्जांपल दिया, राइस का बैग होगा, राइस वाले प्रभु जी है, यस राइस का बैग होगा थोड़ा, तो वो राइस की बैग में क्या सामान कैसी क्वालिटी है उसके लिए आपको थोड़ी पूरी बैग थोड़ी खोलनी पड़ती है, वो तो तीन चार हाथ में लेकर के दाने आप देख के बोल देते हो कि ये क्वालिटी है, उसके लिए मैं थोड़ी बोली पड़ जाती। तो उसी तरह से किसी भक्त को देख करके ही पता पड़ जाता है कि भगवान कैसे होते, ऐसी क्वालिटी भक्त में होती है। अद्वेष्ट भगवान के स्वभाव को समझना बड़ा मुश्किल नहीं है, आपको स्टडी करना है अपने आप को। नित्य नित्य राम जी मस्त यू आर लाइक अ सेंट्रल ऑफ गॉड। आप भक्त जो होते हैं वो उनकी जो क्वालिटीज है यहाँ पर मेंशन की गई है वो सब वास्तव में भगवान की क्वालिटीज है, लेकिन ये क्वालिटी भक्त में पाई जाती है।
यहाँ पे मैंने लेक्चर में यही सुना था तो सैंपल में यहाँ पर को ही कंपेयर किया हुआ है ना, नॉट एनी अदर बीइंग सैंपल ऑफ गॉड लाइक ड्रॉप ऑफ ओशन
समथिंग यू हैव समथिंग गुड दैट इज कमिंग फ्रॉम गॉड।
ये जो लक्षण
बताया
सारे
भक्तों
में ही
नहीं हो सकते हैं बात, लेकिन भक्त के लिए बात हो रही है तो चैप्टर का नाम ही भक्ति हो गए, तो भक्त के लिए ही बोला गया है। अद्वेष्ट आप भक्त को छोड़ करके किसी और को देखो तो उसमें अद्वेष्ट ढूंढना और कुछ नहीं पॉसिबल। अब भक्तों में ही ढूंढना पड़ता है हाँ, भक्तों में भी अद्वेष्टा अलग बहुत मुश्किल से मिल जाता है कोई, लेकिन तो आप नॉन योगी का बात ही छोड़ो है ना। सो अद्वेष्ट समय होता है मैत्र, मैत्र का अर्थ होता है मित्रता। भक्त जो होता है सबका मित्र होता है, वो किसी मच्छर मक्खी को भी मार नहीं चलता, चूहे से भी परेशान नहीं होता और सबका मित्र होता है। अदर वर्ड्स भक्त जो होता है वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता और सबको अपना मित्र मानता है, और वो उसका कैसा क्वालिटी होता है कि उसके साथ दो में भी कोई बात करेगा उसको फ्रेंडली लगेगा तुरंत, इज सच नाइस पर्सन ऐसा लगेगा, तो बात करने से कितना अच्छा लगा। Why? Because he is devotee. So he is a maitra. People like to have friendship with him.
Last
name
बोले
गए मुझ में बुद्धि स्थिर था, तो वही भक्त के लिए बताया ना। हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम पहले जो क्वालिटी उसके बाद फिर दूसरा क्वालिटी लिया हमने मैत्र, फिर अब हम तीसरा क्वालिटी लेंगे करुणा। तो ये अलग अलग क्वालिटी हम चर्चा कर रहे हैं, ये भक्तों के विषय नहीं है, ये सारा भक्तों के लिए नहीं है, सारी क्वालिटी भक्तों का ही है। फिर करुणा ही होता है, करुणा का अर्थ है कि वो बहुत ही काइंड होता है, फिर काइंड अलग है। ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर एग्जाम्पल दिया कि ऐसा नहीं कि कृष्ण भावना के और भारत के लोगों के लिए है, सबके लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भक्त प्रचार करेंगे तो एक भक्त आएगा बस, उन्होंने बोले कि तुम इसको वाले केवल धनवानों को ही पीछे क्यों करते, गरीबों को पीछे क्यों नहीं करते। तो फिर मैंने उनको पूछा, मैं उसको उत्तर आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दो कि धनवान को पीछे क्यों ना करें, पहले उसका आंसर दो। और फिर हमने उनको बताया कि हम गरीबों को भी पीछे करते कोई तरीके, जैसे कहने का था भक्त जो होते हैं उनके लिए कोई धनवान है कोई गरीब है, कोई बहुत बुद्धिशाली है कोई मूर्ख है, कोई सुंदर है कोई बदसूरत है, ये सब नहीं होता है, वो सबको प्रीचिंग करते हैं। यहाँ तक कि जो मांस खाने वाले हैं गाय का मांस खाने वाले हैं व्यभिचारी है नशेवा है उनको भी प्रीचिंग करते हैं। तो इसलिए वी डोंट हैव वी शुड बी काइंड टू एवरीवन, सब पर दया होनी चाहिए, सब पर प्रेम होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसको तो कोई काम नहीं।
हमारे भक्ति वृक्ष में मतलब ग्रेटर नोएडा की बात कर रही हूँ, वहाँ पे एक माता जी थी वो बहुत स्वीट थी, तो वो अपने ऑफिस जाती थी बस में पब्लिक बस में, तो उसने एक बार वो यूनक्स आए थे जैसे मानने के लिए, तो उन्होंने उनको भी प्रीच किया, उनसे हरे कृष्णा मानते, तो वो हरे कृष्णा गाते हुए गए थे।
सभी कहना ऐसा नहीं कि हम प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन लोग तो पुरुष भी नहीं है, एक तो स्त्री भी नहीं है, तो इनको पुरुष ही कैसे करें। नहीं, प्रचार को जीव है ना, वो भी जीव है। कई बार प्रभुपाद भी ऐसा ही है, वो खाते थे और फिर कभी प्लेट फेंक देते थे, कोई कुत्ता आया कोई बिजली होती थी उसको प्रसाद दे देते थे, कई सारे महाप्रभु ने अपने प्लेट से नार पानी ले लिया, तो उसको आप एक एक क्वालिटी को एक चिट्ठी में लिखो। निर्भव विदाउट क्लेमिंग एनी पर्सनल प्रोप्राइटरशिप, अर्थात किसी भी चीज का स्वामित्व, ये जो मेरा है मेरे लिए है, इतना मेहनत करके मैंने कमाया, भगवान को देने के लिए देंगे ना, वहां थोड़ी के वहां थोड़ी देते। तो निर्भव भक्त जो होते हैं वो भगवान को सबका मालिक मानते हैं, स्वामी है, एक्चुअल प्रोप्राइटर, मेरा तो एक्चुअली कुछ भी नहीं है, ये मेरा है मेरे लिए, या फिर मेरे स्वामी मेरे भोग के लिए होना चाहिए, मेरे आनंद के लिए होना चाहिए। सो इस चीज से वो हट जाते हैं, जैसे बोलते केवल ये मेरा कमरा है, कई बार हम ब्रह्मचारी को देते यहाँ पर तो जरूर मत कि मेरा कमरा है, यहाँ पर मैं ही सोऊंगा, और इस चीज तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आए इस बात की कि यहाँ पर सोएंगे या यहाँ पर सोएंगे। बस यहाँ सरस्वती महाराज कह रहे थे कि मैं मुझे कभी कभी इच्छा होती है कि पूरा मंदिर बेच दो और इसमें से जितने मार्बल के टुकड़े मिलेंगे उसको बेच कर तो उसमें बुक्स छपाओ, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लोग कमरे के लिए झगड़ रहे हैं, इस कमरे में मैं रहूंगा इस कमरे में मैं रहूंगा, कमरे के लिए आपस में झगड़ रहे हैं इस चीज को। तो स्वामित्व की भावना, ये मैं इसका स्वामी हुआ रहे तो मेरे धोती को हाथ कैसे लगाया लग जाए, तो ये स्वामित्व की भावना है। तो ये निर्मम जो है उससे मुक्त होना चाहिए भक्तों को। ये सारी जो क्वालिटीज आप देख रहे हो आपको ऐसा लगे कि हाँ बड़ी अच्छी है सब क्वालिटी, लेकिन हमें इन सबको हमारे आश्रय में लाना है। तो ये है निरंकार, अहंकार की बड़ी समस्या है, मुझे बोल दिया। 99.9% झगड़े इस्कॉन के बाहर और इस्कॉन के अंदर इसी के कारण अहंकार के कारण, मैं नहीं झुकूंगा आपको जो बोलना बोलूंगा, काम नहीं करूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, सॉरी नहीं बोलूंगा, आपको जो करना है जो देखो प्रभु जी मैंने कुछ गलती नहीं किया था, गलती उसकी है उसको सॉरी बोलना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे जगह होते हैं, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं अहंकार के कारण, उससे नहीं होगा ये चिंता बोल रहे तो क्या बोलेंगे, मैं ऐसा ही रहूंगा आपको जो मानना है मानना, तो आपने बहुत अच्छा क्वालिटी सुधार किया। कुछ लोग सोचते हैं बोले हम अहंकार तो नहीं कर रहे लेकिन हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट तो होता है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट, और सेल्फ रिस्पेक्ट में भी यही होता है। प्रभुपाद जी बहुत विस्तृत डेफिनेशन दे रहे कि मैं ये शरीर हूं इसको बोलते हैं अहंकार, मैं शरीर बस इसको, फिर उससे आएगा मैं भारतीय हूं मैं हिंदू हूं मैं मुस्लिम हूं मैं गधा हूं मैं कुत्ता हूं बोले जाए अहंकार बोल रहे हैं। अगर मैं भारतीय अमेरिका इस प्रकार की मैं पहचान बताता हूँ तो उसको हटाना चाहिए। एक ही पहचान हमारी होनी चाहिए कि मैं कृष्ण का दास, बस यही हमारी पहचान। और दास का काम होता है दास बनना, स्वामी बनना नहीं। दास का काम होता है सेवा करना, सेवा लेना नहीं। तो इसलिए हमारा जो अहंकार है, जो वस्तु हमारा शत्रु है, तो आप चाहते हो कृष्ण भक्ति में कोर्स तो आपको 4 महीने में खत्म हो जाए, लेकिन आप चाहते हो कि आप आगे कृष्ण भक्ति में कहीं अटके नहीं और आपको कृष्ण से आना है, तो ये सारे क्वालिटीज को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। निर्हंकार तो इस तरह से हमें सोचना चाहिए कि अहंकार हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, कम से कम भक्तों के बीच में इस अहंकार को नहीं लाना चाहिए। अगर हमारा अहंकार रहेगा तो आप 1% अहंकार रहेगा ना, तभी भगवान हमसे दूर रहेंगे, पास में नहीं आएगा, तो पसंद नहीं करेंगे भगवान, वो बदबू आएगी, अहंकार की बदबू आती है। और समा दुख सुख का अर्थ होता है सब प्रकार के सुख और दुख होते, जो सुख जो दुख होते हैं उससे समानता। जब मुझे ये पता है कि मैं शरीर नहीं हूं, तब मुझे ये भी पता है कि मेरा सुख और दुख मेरे शरीर के कारण होता है। कभी कभी मुझे गर्मी लगती है तो पंखा चाहिए, और इस तरह से मैं ठंडी के समय में पंखा बंद कर देता हूं, तो मेरा शरीर जो है वो अलग अलग सिचुएशन में दुख और सुख लाता है, लेकिन मैं वास्तव में शरीर नहीं हूं और मुझे इनको सहन करना सीखना चाहिए। शीतोष्ण सुख दुख ऐसा ना क्या होता मात्र स्पर्शांश पहुंचेगा, शीतोष्ण सुख दुख है, इसलिए इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। विशेष करके आध्यात्मिक कार्य कंप्लीट करने के टाइम पे ऐसा है कि बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं। हेल्थ कॉन्शियस से अगर थोड़ा सा छींक आएगा ना तो भी आज कुछ नहीं होगा, आज माला नहीं हो पाएगी, आज जीवन नहीं हो पाएगी, आज मंगला नहीं, एक छींक आया था ऐसे। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए मेरे सिर में दर्द है तो मुझसे ये नहीं होगा, मुझे खांसी हो गई है तो मैं लेक्चर नहीं दे सकता, मुझे बुखार आ रहा है तो मैं मंगला आरती नहीं कर सकता। हम लोग हमेशा कहते थे मंदिर में, पहले जब यहाँ पर आई यूज टू से कि आपके मंदिर में कितने लोग रहते हैं, अगर आपको ये देखना है ना तो प्रसादम टाइम मिल जाएगा, सब देखेंगे, सब कौन रहता है कहाँ रहता है सब देखेगा, वो भी दिखेगा कि जो बीमार है वो भी दिखेगा। कोई जो बीमार होता है ना होता है जिनके अंदर चिट्ठी आती है हमारे पास टेंपल पेट्रोल के पास कि आज मैं मंगला नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार था,
ऐसे लोग आते हैं वो यहाँ पे आके पूछते हैं प्रसाद किधर है तो इधर बाजू में, फिर पूछते हैं मंदिर किधर है।
अच्छा हाँ अच्छा, वो चलो पूछा तो सही मंदिर किधर है,
प्रसाद में पूछते फिर बाद में पूछते मंदिर किधर है।
तो चिट्ठी आती थी प्रसाद आज मंगला में नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो प्रभु जी उसको उत्तर देते कि बीमार लोगों को तो ऐसे भी काम खाना चाहिए, इसलिए आज प्रसाद नहीं लेना क्योंकि तुम मंगला में नहीं आया था तो आज प्रसाद नहीं मिलेगा। एक्चुअली हमारे मंदिर में पर ऐसा एक नियम था कि जो मंगला में नहीं आएगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा, ऐसा नियम था पहले मंदिर में। 4:30 बजे एक मंगला आरती में अटेंडेंस पूरी आती थी, वो अटेंडेंस शीट ले करके 9 बजे गेट के आकर ड्यूटी बैठ जाता था, बोर्ड हो गई कौन है आपका नाम तो नहीं है, प्रभु जी आपको आज प्रसाद नहीं मिलेगा सॉरी, ऐसा ऐसा नियम था पहले,
जो लोगों ने बताया था
सही लोगों ने बताया था, ऐसा नियम था पहले
मंगला में नहीं
आया पता है। मैं देखा हुआ ये सब नोटिस किया हुआ, मना किया गया होगा अटेंडेंस जो है सब देखा है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, कितना भी सुख आ जाए, अचानक से किसी के पास लॉटरी लेते हैं बहुत रुपए आ जाए तो क्या करो, ठीक हो और सेवा करते थे पहले वो विश्व। अब तो हमें ऐसा भी कहते चेक निकालते हैं, बताओ क्या है। अब सर चेक बुक निकालते हैं, कितना चाहिए, 2 लाख 5 लाख, ऐसे बात करो ना, ये क्या है प्रसाद में सेवा दो, इसमें वो सेवा दो, प्रसाद वितरण करो, गुड डिस्ट्रीब्यूशन करो, मंदिर में करो, ये सब करने के लिए ना धन आने के कारण होगा। तो ज्यादा सुख से या दुख से वो विचलित नहीं होता, तो विचलित नहीं होता इसका इसका मतलब सुख दुख समान, सुख दुख और या उसके प्रति समान भाव। और फिर क्षमी, क्षमी का अर्थ होता है माफ कर देता है। ये भक्तों का एक बहुत स्पेशल क्वालिटी होता है कि उनके पास क्षमा का सागर होता है पूरा, कितनी बार गलती करोगे उतनी बार क्षमा कर देता है। तो सही में भक्त होता है, आप देखना कई बार भक्तों को आपने खुद नोटिस किया होगा कि गलती आपकी होती है लेकिन वो अपने मन पे नहीं लेते इस बात को। क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनमें ठूस ठूस के भरी हुई क्षमा, तो क्षमा तुरंत क्षमा कर देता। एक्चुअली उनको क्षमा करना भी पड़ता है भक्तों को, अगर वो क्षमा नहीं करेंगे तो उन लोगों को कैसे संभाल पाएंगे भक्ति में। क्षमा करना ही पड़ता है, प्रभुपाद को गुरु लेने को उसको क्षमा करना पड़ता है और क्षमा करते भी है मन से, ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है छोड़ दे जा बात है क्या कर, ऐसा हो जाता है क्षमा कर देते, बहुत क्षमा मन होता है ठूस ठूस से। प्रभुपाद से इवन मैन नॉन यू इज फादर, कौन था प्रहलाद का पिताजी हिरण्यकशिपु, प्रहलाद वॉज अ डिवोटी एंड हिज फादर वॉज एनिमी, दूसरों की तो बात छोड़ो खुद के पिता सबको भक्तों को सब जगह से कहीं ना कहीं शत्रुता मिली जाती है। जैसे भक्ति में जुड़ते हो या तो आपके रिश्तेदार आपके शत्रु बन जाते हैं या पिता आपके शत्रु या पड़ोसी आपके संस में कोई ना कोई आपके शत्रु बन जाते, आप उनको शत्रुता तक नहीं देते लेकिन वो आपको शत्रु मानते। प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को शत्रु नहीं मानते थे, हिरण्यकशिपु प्रहलाद को शत्रु मानते थे, लेकिन बाद में जब नरसिंहदेव प्रकट हुए, नरसिंहदेव ने उसका वध किया हिरण्यकशिपु का, फिर प्रहलाद ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पिताजी दुष्ट बुद्धि के थे, आपका विरोध करते थे, आपने उनकी हत्या की है, उनका वध किया है, तो आप उनको क्षमा डाल, उनको आपकी सेवा में एक स्थान दे रहे ये सब द्वारा टॉर्चर बहुत टॉर्चर किया थे लेकिन उसको क्षमा कर रहा है। तो जीसस के लिए भी कहा जाता है कि इनको क्षमा दे रहे, लोगों को पता है कि ये क्या कर रहा है। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर को 22,000 में मारा लेकिन जब उनको पता पड़ा कि अगर मैं नहीं मरूंगा तो ये लोग मरेंगे, मुझे मरना चाहिए, अगर मैं नहीं मरता तो राजा इंद्र को मार देगा इन लोगों को, तो फिर उन लोग को बचाने के लिए खुद नाटक किया, मर गया। तो कहने का तात्पर्य को तुरंत क्षमा, तुरंत क्षमा करते थे भक्त। कई बार कहते क्षमा बोलने से पहले क्षमा मिल जाती है भक्त के पास।
क्षमी मीन्स फॉरगिविंग,
ये तो
बच्चे
प्रभु व्हाट
क्षमा के रूप में लेकिन उसके बाद संतुष्ट आता है, उसके बाद संतुष्ट है यहाँ पर तो सहिष्णु को लिखा गया क्षमा के नाम में, अर्थात कोई वर्ण क्षमा करना कि किसी ने क्या आपका पेड़ कोई पेड़ है उसका फल तोड़ के उसके काट दिया तो सहिष्णु ने उसको क्षमा कर दिया, फिर वो लकड़ा जो बच्चा कटने के बाद लोगों ने तुम जला के ठंडी के मौसम में गर्म कर लिया, इसका जो काम आता है। अर्थात भक्त जो होता है उसको आप पूरा कुचल डालो, काट डालो, कुछ भी करो, फिर भी वो आपको क्षमा ही करता रहता है, क्षमा करता ही रहता है बार बार। तो फिर आप ये सब मैं बता रहा हूँ इसलिए कि हाँ उसी भक्त में ऐसा होता है, इसके लिए नहीं, मैं बता रहा हूँ कि है हम सबको ये लागू करना है, हमें ऐसा बनना है। आप कहेंगे आप लोग ऐसे भक्तों को तो मैंने देखा है कि बहुत क्षमा करते हैं, बहुत क्षमा, अरे भाई वो उनको तो देखा, हमें खान क्षमा करना है। आज ये सीखने के बाद अगर आपको कोई कष्ट दे तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि आप क्षमा कर दो उसको, लेकिन पूरा क्षमा कैसे करेगा, बॉइल हो रहा है पूरा ब्लड, कैसे क्षमा कर दो मंत्र उठने बदल दो इसको। लेकिन फिर याद आता है भगवत गीता भगवान कहते हैं क्षमा करना है, ठीक है जय अशोक क्षमा करना है हमारे सैद्धांतिक रूप से समझना चाहिए, सैद्धांतिक रूप से ओके आई विल फॉरगेट इट, मैं भूल जाऊंगा, ठीक है। एक सिंपल लॉजिक है इसके लिए, आपको व्यक्तिगत रूप से कोई कष्ट हो रहा हो या आपका अपमान हुआ हो तो आपको इसका प्रतिकार करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। गुस्सा आपको तभी करना चाहिए जब भगवान या किसी और भक्तों का नुकसान हुआ हो या अपमान हुआ हो, तभी आपको गुस्सा होना चाहिए। अगर मुझे कोई चोर चक्कर डाकू ऐसा कुछ भी बोले तो ठीक है, आई शुड बी ओके विद दैट। उसको पर्सनल मुझे कोई बोलता है व्यक्तिगत रूप से तो मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट इन सेंस क्षमा कर देना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए, उसको गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरे किसी को तो हम लंका जाना था उसके फिर संतुष्ट का, संतुष्ट का अर्थ होता है उसको जो कुछ भी प्राप्त होता है वो सब में वो संतुष्ट रहता है, सब कुछ। जैसे प्रभुपाद कहते हैं उसके विषय में संतुष्ट सैटिस्फाइड भक्त जो होता है वो किसी भी अवस्था में असंतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा संतुष्ट रहना चाहता है, क्योंकि जानता है कि मैं कृष्ण पे आधारित हूं और हमेशा कृष्ण पे आधारित रहता है। कोई बड़ा प्रतिपक्ष कहते हैं कि रूप थोड़ा और बन मिल जाए बस फिर तो कोई ढंग से नहीं करते, जो कि मुझे थोड़ा एक प्रॉब्लम है मतलब मेरे बेटी की शादी हो जाए या फिर मेरी अपनी शादी हो जाए, तो इस तरह से कुछ ना कुछ ब्लॉक्स होते हैं माइंड में, ये हो जाए काम फिर तो सेवा ही सेवा है। तो ये सारी सब चीजों से वो ठीक हो जाता है, उसको परेशान है संतुष्ट होते हैं, कृष्ण जो देना चाहेंगे वो देंगे, नहीं देना चाहिए अभी भी माता जी को मैं बता रहा था ब्रेक में कि एक सर एक लेक्चर में बता रहा था कि हम से कितने भक्तों की ये कैपेसिटी है कि हम ये स्टेटमेंट दे कि हे कृष्ण आपको जो ठीक लगे आप ये दीजिए, आपको जो ठीक ना लगे वो मत दीजिए। आप मेरी बात तो सही है उसमें क्या गलत है, लेकिन बोल नहीं पाते हम ऐसा बोल नहीं पाते क्योंकि जब भगवान बोले ना नहीं तो कहा नहीं तो घर पक्का नहीं नहीं ये तो चाहिए ये तो चाहिए। तो इस तरह से इस शरणागति का अर्थ होता है कृष्णा माओ भी राघो भी जो इच्छा हो आपको जो इच्छा है मुझसे करवाना है नचाओ कठपुतली की भांति जैसे नचाना है नचाओ जो आपको करना है करो लेकिन आपके आदेश का पालन करना आपकी प्रसन्नता के लिए काम करना यही मेरा एकमात्र धर्म है यही कार्य में करूंगा और कुछ नहीं करूंगा चाहे उसमें मुझे कष्ट भोगना पड़े या मुझे सम्मान मिले व्हाट एवर इट इज तो संतुष्ट होना चाहिए भगवान चाहे मुझे दुखी होना चाहिए तो फिर दुखी होना और क्या भगवान चाहे कि नहीं बेटा तुम इतना डिजर्व तो साइकिल ही चला सकते हो बस तुम्हें गाड़ी नहीं पड़ेगी ठीक है तो साइकिल चला बस हो गया यू शुड एक्सेप्ट ये इसको बोलते संतुष्ट ये नहीं सो प्रत्येक कंपास सभी क्षमा ये श्लोक हमारा व्यक्ति को बोला था आपको याद कर लो प्रभा बार बार उपयोग में लाते इस श्लोक प्रत्येक कंपास सभी क्षमा ये भगवान की विशेष कृपा है कि हमारा जो महान दुख होता है उसको कम कर देते हैं और थोड़ा जो सुख होता है उसको बड़ा करके देते हैं फिर सततम योगी का अर्थ होता है कि यहां तक कि वो कष्ट में होने के बाद भी कृष्ण का ही चिंतन करते हैं कितना भी अवस्था दुखी हो कोई बात नहीं भक्त तो कहते हैं ना कि बीमार होने के बाद भी आज माला की हुई फिर हुई आज तब भी ठीक है और उस समय तो करना ही उस समय तो और सारे कार्य को आप छोड़ सकते हो किसी भी अवस्था में कृष्ण को नहीं मिलता किसी भी अवस्था में चाहे आप आईसीयू में एडमिट क्यों ना हुए हो फिर भी आप कृष्ण को नहीं भूल सकते वहां पर भी वहां भी चैन चले कृष्ण उसमें भी आप क्या आप याद रखते हो कि सोना माला के गुरु जी को प्रॉमिस दिया है मैंने तो जो प्रॉमिस देते हैं उसको फॉलो करते हैं वो जेंटलमैन होते हैं लेकिन जो प्रॉमिस करने के बाद वो फॉलो नहीं करते हो तो सज्जन व्यक्ति भी नहीं माना जाता तो सज्जन भी नहीं है तो भक्त कैसे माना जाएगा उसको और तो सज्जन भी नहीं हुआ सो यथात्मा दृढ़ निश्चय दृढ़ निश्चय का अर्थ क्या होता है कि उसको पता है मेरा कार्य है कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण की सेवा करने से मेरी सारे मनोरथ अपने आप सिद्ध हो जाएंगे सारे अदर जो धर्म है वो सब अपने आप सिद्ध हो जाएंगे कृष्ण भक्ति करके सर्व कर्म कृत है कृष्ण भक्ति करने से मेरे सारे कर्म जो है वो सफल हुए सिंपल लॉजिक है हेमर भट्ट कहते हैं कि प्रभु ये समस्या है वो समस्या है इसको कैसे ठीक करूंगा उसमें सिंपल लॉजिक आप कृष्ण कर्म करो भगवान की सेवा करो बाकी का सारा कार्य कृष्ण संभालेंगे सब संभालेंगे मेरी इमरजेंसी तो नहीं है वो भी आ जाएगी मेरे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है वो भी आ जाएगा सब आपको जो जो चाहिए जो जो आपके रिक्वायरमेंट है वो कृष्ण का प्रॉब्लम बन जाता है मान इसलिए कृष्ण कर्म करिए कृष्ण कर्म करो देन सर्वकर्म करो ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग श्रद्धा सबसे विश्वास का है सुदृढ़ निश्चय सुदृढ़ निश्चय श्रद्धा सबसे श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं भगवान के शरणागत हूं और कृष्ण अवश्य में रक्षा करेंगे तो मैं क्यों चिंता करता हूं बार बार ये विश्वास हमें होना चाहिए हमारे विश्वास उसी समय परीक्षा होती है फिर मैय बिना मनोबुद्धि है श्लोक हितात्मा दृढ़ निश्चय मैय पिता मनोबुद्धि मैय पिता मनोबुद्धि का अर्थ है निरंतर मन और बुद्धि को कृष्ण के स्वरूप में लगाना ध्यान अवस्थित तदेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः आप मुझे आएंगे राधा गोविंद जी का दर्शन करेंगे उनका विचार उनका चिंतन कीजिए यही सबसे उत्तम योग सिस्टम है आप सतत योगी तभी बन रहे योग मत भक्त ऐसा इस तरह से करने वाला जो भक्त होता है वो मुझे सबसे प्रिय भक्त है वेरी डियर टू डिवोटी एंड वेरी डियर टू डिवोटी सो ये सब क्वालिटीज हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारी क्वालिटीज है। सो एक्चुअली ये सारी क्वालिटीज को एक एक करके हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिटेल में, लेकिन हमने संक्षिप्त में समरी के रूप में थोड़ा 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 सारी क्वालिटी उसमें बताया। सो नाउ तात्पर्य भी पढ़ लेना बाद में। टेक्स्ट नंबर 15,
जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है।
यस, यहाँ पर तीन क्वालिटी बताइए, राइट। एक तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना और किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, अर्थात किसी को उद्वेग नहीं देता और दूसरों के द्वारा उद्वेग प्राप्त नहीं होता। कई बार क्या होता है, भक्त लोग जैसा मैंने आपको बताया कि वो किसी को ऐसे कष्ट नहीं करेंगे, लेकिन काम ऐसा करेंगे कि दूसरे को कष्ट होगा। मैंने थोड़ी किया तुम्हें, अभी उसको परेशान हो रही तो नहीं किया, लेकिन उसको पता है कि इससे उसको परेशान होने वाली है, क्यों परेशान कर रहे हो उसको। तो किसी को कष्ट नहीं देता हो और कोई लगातार परेशान करने के लिए तुला पड़ा है, इनको तो परेशान करना है, तो वो विचलित नहीं होता। जैसे प्रभुपाद का एक व्यक्ति आया था प्रभुपाद के पास, लगातार 2 घंटे तक प्रभुपाद का सिर खा गया, और बाद में प्रभुपाद को कहा प्रभुपाद जी मुझे क्षमा कीजिए, मैं यहाँ आया था एक लक्ष्य के साथ। प्रभुपाद ने कहा क्या, मैं ऐसा चाहता था कि मैं आपको गुस्सा दे रहा हूं, मैं लगातार 2 घंटे से प्रयास कर रहा हूँ, गुस्सा देने का गुस्सा हो ही नहीं रहा, प्रभुपाद गुस्सा हो ही नहीं रहे, कितना प्रयास किया गुस्सा हो ही नहीं रहे। सो द पॉइंट इज कि भक्त विचलित तो नहीं होता किसी में भी, किसी अवस्था में भी कृष्ण भक्त को छोड़ता नहीं, सुख दुख में भय चिंता में संभाव रखता है। तात्पर्य पढ़िए इसका।
इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट चिंता भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी की चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शुद्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावना मृत में लीन रहते तथा भक्ति में रत रहने के कारण ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषय व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है।
मेरा
ऐसा भक्त जो सामान्य कार्य कलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है।
तो प्रभुपाद कहते भगवान कहते हैं सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, लेकिन मुझ पे आश्रित रहता है, वो डिपेंडेंट नहीं रहता लेकिन वो मुझ पे डिपेंडेंट होता है। मेरा भक्त शुद्ध होता है, शुद्ध का अर्थ है कि बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि का अर्थ होता है कम से कम दो बार स्नान करना, दिन में दो बार उसका स्नान करना है बाह्य शुद्धि है, कि स्नान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुद्धि में, बाह्य शुद्धि में क्या क्या आता है, ऐसे भोजन के पश्चात हाथ धोना, पांव धोना, फिर शौच क्रिया के पश्चात स्नान करना, फिर अगर आप मुंह में डाल दी कोई किसी को मुंह में वो चबाने का नाम से चबाते, कुछ लोग कुछ लोग मुंह डालते रहते हैं, तो ये सब अपवित्र वस्तु मानी जाती है, ये शुद्ध नहीं होते है। सॉरी अगर आप ऐसे किसी को याद रहते तो, लेकिन अगर वो भी ऐसा तो उसको बंद कर लेना, दांतों चबाना है तो इसे अच्छा कुछ प्रसाद खा लो, तो दांतों नहीं चबाना, फिर मुंह में उंगलियां नहीं डालना, अगर डालना ही पड़ेगा तो हाथ धो लो, प्रॉब्लम है।
नखून करना, बाल करने से तो नहाना पड़े,
हाँ तो भी नहाने के पहले होता है सब कुछ, नाखून काटना, बाल काटना इत्यादि सब। तो ये ऐसा होता है बाह्य शुद्धि, ये हमारे कल्चर में आना चाहिए सब कुछ, कल्चर धीरे धीरे जा रहा है। जैसे हम लोग भक्त लोग शुद्धि को मानते हैं, जैसे जूते को हाथ लगाने के बाद हाथ धोना चाहिए आगे के लिए, कुछ लोग जूता हाथ से पकड़ते हैं फिर हाथ धोते नहीं है, कई बार प्रसाद खाने के बाद पेपर से हाथ घुस पोछ देते पेपर से हाथ पोछते, अभी ठीक है पोछते थे दस पाए, लेकिन वो हाथ तो धोना बाकी रह गया, अभी तो धोना ही पड़ेगा आपको, हाथ तो धोना ही पड़ेगा। तो शुद्धि का ये होना चाहिए। फिर मैले वस्त्र नहीं पहनना, दो दो दिन तीन तीन दिन तक चल गए वस्त्र, ऐसा मैले वस्त्र नहीं पहनना, शुद्ध तो फटा हुआ चलेगा लेकिन धोया हुआ होगा। तो ये सब शुद्धि का है, बाह्य शुद्धि ये सब। फिर आंतरिक शुद्धि, आंतरिक शुद्धि होता है गुरु का आदेश का पालन, तो भक्त होता है शुद्ध होता है, दक्ष भी होता है, दक्ष का अर्थ होता है एक्सपर्ट, उसको पता है कि ये कृष्ण कर्म कैसे किया जाता है, उसको पता है कि कृष्ण को कैसे प्रसन्न किया जाता है, वो चिंता रहित होता है, चिंता रहित आदमी का होगा भक्त एकदम लाइट रहेगा, फ्री, कोई चिंता नहीं होगा, एकदम टेंशन फ्री। हम उसको पूछोगे आप ऐसा कैसे, इतना परेशान रहते, कई लोग इस काम इसी में जुड़े हैं, इसको कोई चिंता ही नहीं, ये तो भक्त कैसे, ये कैसे लोग ये लोग, हरे कृष्ण वो कोई चिंता ही नहीं। तो काफी लोग ऐसे, मुझे भी कई लोग मिलता है, आप लोग अजीब प्रकार के किस मिट्टी से बने, और आपको कभी कोई चिंता ही नहीं, भक्त इसलिए चिंता नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कंट्रोल में नहीं हूं, कृष्ण कंट्रोल है, अब मेरा क्या होगा, उसका क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, कितना बेहतरीन भगवान हो गया, तुम कंट्रोल कर लो सब चीज को, नहीं तो छोड़ दो फिर तो चिंता है। सब प्रकार के कष्टों से रहित, सब प्रकार के कष्टों से रहित का अर्थ क्या होता है, कि वो मानता है कि मैं शरीर होंगे जब भी कष्ट आएगा, सब प्रकार के कष्टों से रहित, और किसी फल के लिए प्रयत्न शुरू होता है, तात्पर्य कई तो हमें पता है, भक्त को धन दिया जाता जा सकता है कि दूसरे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए,
भक्त को धन दिया जा सकता है किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए, भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वो उद्विग्न नहीं होता, स्वाभाविक एक भक्त दिन में दो बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातकाल जल्दी उठता है, इस प्रकार वो बाहर और भीतर से स्वच्छ रहता है, भक्त स्वयं दक्ष होता है क्योंकि वो जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है, वो प्रामाणिक शास्त्र में दृढ़ विश्वास रखता है, भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतः वह चिंता मुक्त रहता है,
किसी दल में भाग नहीं लेता, दल 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 में फंसता नहीं, तो उसको चिंता ही नहीं होती, होता है।
समस्त उपाधि से मुक्त होने का कारण कभी व्यथित नहीं होता और जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतः शारीरिक कष्टों के आने पर वो मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल, उदाहरण किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। तो भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वो अपने परिवार वालों के लिए एक बड़ा सा मकान नहीं बनाता।
हर एक जीवात्मा किसी न किसी के ऊपर आधारित होता है क्योंकि उसकी सिचुएशन ऐसी होती है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सभी लोग भगवान की कृपा पर आधारित है, निर्भर करते हैं सभी पंथ, कोई भी जीवात्मा। लेकिन जब वो अपना भगवान के साथ संबंध भूल जाता है तो फिर वो किसी और पर आश्रित हो जाता है, भगवान के बदले किसी और पर आश्रित, तो पहले कार्यकलापों का आश्रित, तो इस तरह से आश्रित हो जाता है। और वैराग्य का अर्थ होता है कि भौतिक प्रकृति की जो बद्धावस्था है उस पर आधारित नहीं होना, उसको वैराग्य बोलते हैं। प्रकृति की जो व्यवस्था है उसके ऊपर आधारित नहीं रहना, अर्थात केवल भगवान की कृपा के ऊपर आधारित रहना। सही स्वतंत्रता का अर्थ यही होता है कि भगवान की कृपा पे पूर्ण विश्वास, इसको स्वतंत्रता कहते हैं। पूरी स्वतंत्रता तभी मिलती है जब आपको पूरा श्रद्धा है भगवान की कृपा के ऊपर, बस यही वर्ड स्वतंत्रता। यहाँ पर अनपेक्षा, अनपेक्षा का अर्थ होता है न्यूट्रल, वापस कि मैंने वेंट टू अमेरिका, जब मैं अमेरिका गया था तो मेरे पास 40 रुपए थे और सुमती महाराज ने मुझे टिकट दिया था और मेरे पास केवल 40 रुपए ही थे, तो मैं वहां पर उसको रुपए थे ना, तो मैं उसको स्पेंड भी नहीं कर सकता, डॉलर नहीं थे, मैं उसको स्पेंड भी नहीं कर सकता। तो जब मैं कई बार हताश हो जाता था, निराश हो जाता था, तो कभी मैं कैप्टन को कहता था पंड्या था ना, पंड्या जी कैप्टन पंड्या, तो पंड्या मिस मैंने सोचा तो फिर पंड्या है वहां पर कैप्टन पंड्या थे, तो पंड्या को कहा पंड्या जी मेरे पास $1 भी नहीं है, सो प्रभुपाद ऐसा नहीं कहा कि आप कुछ डोनेशन दे सकते हो, तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे पास कुछ पुस्तक है श्रीमद भागवतों का सेट है, मैं चाहता हूँ कि आप ये सेट खरीद लीजिए और उसके सामने जो कुछ डॉलर मुझे मिलेगा ड्रॉपर से मुझे परचेज वन सेट ऑफ माई बुक्स, तो हाँ श्योर स्वामी कितना है, कितना मुझे पे करना है, तो ड्रॉपर जी ने कहा $16 तो पंडिया से नो आई गिव यू 20। तो पंडिया जी ने कैप्टन पंडिया जो थे उन्होंने $20 प्रभात को दिया। सो दिस इज अनपेक्षा, अनपेक्षा का अर्थ होता है न्यूट्रल, इस तरह से हमें रहना चाहिए। ओके टेक्स्ट नंबर 17।
जो ना कभी हर्षित होता है ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से ना तो हर्षित होता है और ना ही हानि से दुखी होता है, वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए ना तो उत्सुक रहता है ना ही उनके ना मिलने पर दुखी होता है, वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभिसीत की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता, वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है, वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने के को भी तैयार रहता है, भक्ति के पालन में उसके लिए कुछ भी बाधक नहीं बनता, ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है।
हम तो बात क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि वो हर्षित नहीं होता, दुखी भी नहीं होता, और ऐसा भी नहीं कि एग्जाम्पल प्रभाव में कोई पुत्र या शिष्य प्राप्ति के लिए उत्सुक रहता है, कुछ शिष्य बने, कुछ अनुयायी बने, मेरा ग्रुप बढ़े, कोई नया भक्त है इसको हमारा ग्रुप एडप्ट हो जाए, तो उत्सुक नहीं रहता, ईगर नहीं रहता ऐसे, और कोई ना मिलने पर दुखी नहीं हो जाता, कोई मेरे ग्रुप में चार लोग है, मेरे चार शिष्य है, मेरा तो कुछ होता ही नहीं, मुझे मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये सब ऐसे ऐसा सोच करके दुखी नहीं हो जाता है। फिर प्रिय वस्तु का खो जाने के लिए पछताता नहीं हो, अपने प्रिय वस्तु खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं, हाय हाय मैंने क्या गलती कर दिया, मेरा सबसे प्रिय वस्तु था वो खो गया, कोई प्रिय वस्तु चली गई। सो इन अदर वर्ड्स भगवान कहते हैं हर्षित नहीं का शोक नहीं करता, पछताता नहीं, इच्छा नहीं करता। इच्छा नहीं करने का अर्थ होता है कि उसके लिए भगवान की इच्छा को पूरी करने के अतिरिक्त आपको इच्छा बची नहीं है, इच्छा नहीं करने का अर्थ है नहीं इच्छा नहीं होती, इच्छा नहीं करने का अर्थ होता है कि भगवान को प्रसन्न करना एकमात्र इच्छा है उसकी, और कुछ इच्छा नहीं। फिर शुभ अशुभ दोनों प्रकार की वस्तु का परित्याग कर दिया है, कि इसको शुभ और इसको शुभ दोनों का परित्याग कर दिया, ऐसा भक्त भी अत्यंत प्रिय है। ओके सो साइंटिस्ट है बॉस्टन में था, मैं सोच रहा था मैं यहाँ आया हूँ, ये लोग मुझे मेरा स्वागत कैसे करेंगे, जैसे मैं कहूँ कि मांस नहीं खाना, सेक्स इलिसिट सेक्स नहीं, गैम्बलिंग नहीं, इंटॉक्सिकेशन नहीं, तो वो सब ऐसा बोलेंगे स्वामी जी घर चले जाओ वापस, यहाँ प्रचार मत करो। ऑल राइट, बाबा ऐसा बता रहे थे, ऑल राइट For one year there was no success and I was always going to speak to us. प्रभा ऐसा होता था, प्रभा इतना परेशान हो जाते थे, कभी रात को आधी रात को जाते थे श्री कंपनी वाले के पास, नेक्स्ट कब है इंडिया जाने का श्री, फिर ठीक है बात है देखता हूँ, फिर आऊंगा, दूसरे कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, फिर जाते थे कैप्टन के पास, नेक्स्ट कब है इंडिया जाएंगे, तो बाद में वो जो मैनेजर था वो मैनेजर ने कहा स्वामी जी आप आते रहते हो पूछते रहते हो कि नेक्स्ट कब इंडिया का शिप है, नेक्स्ट कब है, लेकिन आप नहीं जाते तो हो नहीं, तो फिर पूछे क्यों आते, फिर प्रभु ने कहा हाँ बात तो सही है आपकी, लेकिन जब मैं तू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, आप समझ सकते हो प्रभुपाद से स्थिति फ्रस्ट्रेट हो गए, जब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ तब मैं आता हूँ इधर आपको पूछने के लिए, किंतु मैं वापस चला जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ सोचता हूँ कि दो बार लेट दो महीना ट्राई करते फिर से कुछ हो जाएगा, तो ऐसे दो महीना करते 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 साल ले लेगा, इट वॉज गोइंग लाइक दिस, नो बडी वॉज देयर विद मी, कोई मेरी सहायता नहीं करता, कोई नहीं, ना इंडिया से गुरु भाई लोग करते थे, ना वहां के लोकल लोग सुनते थे, कोई मुझे सुनने को तैयार, कोई मेरी सहायता नहीं करता, एक साल तक मैं ऐसा सुन रहा था बहुत बता, और मैं ऐसा सोचता था अगर मैं वापिस चला जाऊं, तो ऐसा सोचते अगर मैं वापिस चला जाऊं तो अब वापिस टिकट कैसे मिलेगा, फिर से वीजा कौन देगा, फिर ऐसा तो नहीं होगा कि ये कार्य अधूरा ही रह जाए, इससे अच्छा है कि और एक बार ट्राई कर लेंगे, और एक बार ट्राई, आप सोचिए भगवान ने ऐसा थोड़ी कोई सफलता दी है प्रभुपाद को, पूरा निचोड़ लिया है प्रभुपाद को। यहां तक इतना 25 साल इंडिया में सफलता नहीं मिली, 1 साल वहां पर जाना, हम 2 महीने कैप्टन के रूम मैनेजर के पास जाना, कितना परेशान होना, फ्रस्ट्रेट हो जाना। डाउन टाउन बोरी में रहते थे, दरवाजा खोलने के पहले देखना पड़ता था कोई मरा हुआ व्यक्ति तो नहीं पड़ा था। ऐसी अवस्था से प्रभुपाद सफल होने के लिए प्रयास करें। अरे वो डाउनटाउन मोबी स्ट्रीट जो है उसका एक छोटा सा कमरा प्रभुपाद उसको इंटरनेशनल सोसाइटी का फर्स्ट टेम्पल बताना चाह रहे थे। डाउनटाउन मोबी स्ट्रीट का एक छोटा सा कमरा, जस्ट इमेजिन उनका सोचने का तरीका कैसा सोचते थे। सो इन दिस वे प्रभुपाद हमेशा शुभ और अशुभ दोनों से अपने आप को मुक्त रखते थे। इससे पक में पत्र ओके टेक्स्ट नंबर 89 है।
जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है और वह प्रश्न कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं।
तो मित्र शत्रुओं के लिए समान, मान अपमान, ठंडी गर्मी, सुख दुख, यश अपयश में संभाव रखता है। अर्थात जो कुछ रिपीटेशन है पहले के, तो प्रभुपाद कहते हैं कि रिपीटेशन उसपे उसका एक्सरसाइज करने के लिए है, ये अर्जित करना चाहिए हमें। और संतुष्ट असंतुष्ट संगत से दूषित, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, अगर उसको पता है कि इन लोग के साथ में बात करूंगा बैठूंगा तो ये लोग अपने बुरे विचार ही मेरे मन में लाने वाले हैं, तो इसलिए वो हट जाते हैं और अवॉइड करते हैं, नहीं चाहिए मुझे संगति, नहीं चाहिए। फिर मौन, मौन का क्या काम है? हाँ, जैसे कुंभ मेला में हमारे कुछ भक्त है प्रभुपाद के टाइम, तो प्रभुपाद बस प्रभुपाद को एक बाबा है ना 14 साल से मौन रखा हुआ है, तो बहुत प्रभावित हो गए थे। तो प्रभुपाद ने कहा क्या कहते हैं वो लोग, कुछ भी लिखते थे वो लिख कर देते थे, कुछ भी बोलना है ना लिख के देते। तो कृष्णा पढ़ने का कौशल क्या रहे। फिर भगवान से है कि मौन का अर्थ ये नहीं होता कि बोलना बंद कर दो, डोंट थ्रो बेबी विद द बास्केट, मतलब यीशु से मीन्स अगर आपका जीवा है तो बोलना तो पड़ेगा, लेकिन बोलने क्या बोलना क्या नहीं बोलना ये पता होना चाहिए। बोलना ही बंद कर देना ये कोई सुविधा, ये कोई तरीका नहीं। तो मौन वास्तव में ये है। फिर संतुष्ट रहना चाहिए, संतुष्ट धन के लिए संतुष्ट, विशेष करके सुविधाओं के लिए संतुष्ट, और हर एक चीजों के प्रति संतुष्ट होना चाहिए। कई बार देखा जाता है कि भक्त लोग भी धन की प्राप्ति के लिए अनिति का उपयोग करते हैं। अनिति का आप जानते ना, गलत तरीके, इलीगल मीन्स, धन प्राप्ति करने के लिए, धन अधिक धनवान होने के लिए गलत कार्य का उपयोग करते हैं, या फिर उनके आचरण में त्रुटियां पाई जाती है। कई बार देखा जाता है कि भक्त क्या करते हैं, अगर उनमें कमियां होती है धन के लिए बहुत लालच होते हैं तो वो क्या करते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम होती है हमेशा। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन समझे, धन का व्यवहार आता है ना तो वो पता नहीं हाथ से खुल जाता है उसका, दे ही नहीं पाता किसको, नहीं स्वाभाविक होता है कई बार लोगों को। तो विशेष करके भक्तों को संतुष्ट रहने का अर्थ है कि भगवान जो आपको देना चाहेंगे वो आपको देंगे, तो आप ज्यादा प्रयास मत करो उसके लिए। धन कृष्ण नहीं है, ये नहीं सोचना कि धन से कृष्ण की प्राप्ति होगी, लेकिन रोली हमारा जीवा तो फिर श्रद्धा कहां गई आपकी कि भगवान आपको सहायता करेंगे। भगवान आपको अनिति से क्यों सहायता करेंगे, नीति से ही सहायता करेंगे। आपको जो जो प्रैक्टिकली जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा, आप क्यों चिंता करो। लेकिन गलत तरीके क्यों उपयोग करना है, इससे कई बार हम भक्तों को भी कहते हैं कि एक भक्त को दूसरे भक्त के साथ जहां तक हो सके, मैं कई बार भक्तों को कहता हूं जहां तक हो सके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जितना हो उतने कम करो। हो सकता है कि यही चीज आपका आपस में जो संबंध हो बिगाड़ सकता है। ये नहीं करें कि किसी की सहायता मत करो, ये नहीं है इसका अर्थ, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि कई बार क्या होता है कि दो भक्त आपस में इसलिए नहीं बात कर रहे क्योंकि धन का मामला है, किसी ने पैसा दिया था किसी ने वापस नहीं दिया, ऐसा कोई भी मामला है, तो इसलिए इस प्रकार के ट्रांजेक्शन में नहीं फंसना चाहिए। और जब किसी ने हम पर विश्वास रखा है तो उसमें धन का हेराफेरी नहीं हो सकता, फिर इसको उधर दे उसको उधर दे, ये उधर दे। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसा हुआ था हमें जीवी से मैंने उसको बैंक बना, एक 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 मंदिर के कुछ भक्तों ने ये सोचा कि धन चाहिए लक्ष्मी भगवान की संपत्ति है, दूसरों की जेब में पड़े इससे अच्छा तो भगवान के पास पहुंची, तो गलत तरीके का उपयोग है धन कमाने का। फिर बाद में किसी ने कंप्लेंट करा, अरे तुम्हारा इसमें वाला तो ये गलत तरीके का यूज कर रहा है धन कमाने का, इसका सरकार नोटिस देगा उसको पकड़ के ले जाएगी उसको। तो फिर जीवी से जब पता पड़ा जीवी से तुरंत उसको बैन कर दिया, पकड़ लिया तुरंत उसको, भाई तुम्हारा ये सब धंधा बंद और तुम अभी टेम्पल में किसी सेवा में अभी चलोगे नहीं। तो ये करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रभुपाद ने आदेश दिया है कि इस्कॉन संस्था प्रेजेंट जो हमारी गवर्नमेंट होगी उसके सारे नियमों को पालन करेगा, लॉ ये हमारे स्कॉन का लॉ है। हो सकता है कि हम इधर उधर करने का इच्छा करें, लेकिन जीबीसी ने स्पष्ट रूप से बोला कि वी विल फॉलो ऑल द रूल्स, गवर्नमेंट जो भी रूल्स देंगे सब फॉलो करेगा। यही तरीका होता है आगे बढ़ने का। सो संतुष्ट रहना चाहिए। और घरवार की प्रभुपाद के कैसा पर लिया, घरवार की चिंता नहीं करना, ऑटोमेटिकल जाने के लिए देर वॉज नो प्लेस टू लिव। जब मैंने प्रभुपाद के कहा जब मैंने संन्यास लिया जब मैं अमेरिका गया था तो कोई रहने का जगह ही नहीं था, कहाँ रहे, कोई जगह तो होना चाहिए ना, रहे कहाँ पर, नो मनी, पैसा ही नहीं था। संन्यास लिए, उस समय जो मेरे पास कुछ नहीं था लेने के लिए, अब हमारे पास सैकड़ों मंदिर है। बट कृष्णा डज नॉट अलाउ टू स्टे मोर देन 8 days, लेकिन कृष्णा मुझे 8 दिन से अधिक 1 महीने में नहीं जाने देते। और प्राय प्रभुपाद ऐसे मंदिरों में जाते थे जहां पर प्रभुपाद के आने के 5 मिनट पहले सारा काम फिनिश हुआ होता है। तो कभी ऐसे बल्ब नंगे लटक रहे होते हैं, या फिर कभी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होता है, फ्लोरिंग बाकी होता है, या फर्नीचर होता है कमरे में, बाथरूम चल नहीं रहा है, ऐसे कमरों में ही प्राय प्रभुपाद को रहने का होता था, क्योंकि नए नए मंदिर बन रहे थे। तो प्रभुपाद सीधे पहुंच जाते थे उधर प्रचार के लिए, तो वहां कोई सुंदर होते नहीं थे। सर मंदिर प्रभुपाद से कि मैं कृष्ण पे निर्भर रहता था, कृष्णा अलाउ करेंगे हरे कृष्ण। प्रभुपाद से कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि वो दिन बहुत अच्छे थे कि जब मेरे पास कोई घर ही नहीं जाने के लिए, वो दिन बहुत अच्छे थे। अब मेरे पास बहुत सारे शिष्य हैं, अच्छे शिष्य हैं, मेरे सब कुछ लाते हैं, मैं केवल आदेश देता हूँ, वो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन कृष्ण पे आश्रित रहना ये उससे अच्छा था। आई वॉज एंजॉय प्रभु से कभी ये, आज एक पैर के नीचे कभी दूसरे पेड़ के नीचे, छेगो स्वामी का एक ठिकाना नहीं था, एक पेड़ के नीचे ज्यादा नहीं रहते, आसक्त हो गए तो ये पेड़ ज्यादा छाए जा रहे, तो इसके नीचे आसक्त हो तो एक पेड़ के नीचे नहीं रह रहे, तो निरंतर चेंज करते रहते पेड़, यानी कि फुल डिपेंडेंस। एक बार ऐसा हुआ था भुवनेश्वर में प्रभात गए थे 1977 में, तो वहां पर बहुत जंगल था, बहुत मॉस्किटो, किसने सब मॉस्किटो के प्रजापति बड़े बड़े झंको साइज। मैं जब गया था भुवनेश्वर एक बार, तो वहां पर भी नया नया मंदिर बना था, उस समय भी इतने सारे मॉस्किटो। और प्रभात जब गए थे उधर, वहां पर मॉस्किटोस तो थे, सांप भी आते थे, हर इधर सांप उधर सांप, और कहीं से स्कॉर्पियन इधर स्कॉर्पियन, तो और सिटी से बहुत दूर था, किसी जंगल के मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसे जंगल के बीच में, दिन में भी कोई डाकू भी प्रभात कर रहे, दिन में कोई डाकू भी नहीं जाता, चोरी करने इतना भय रहता हो। हालांकि डाकू तो उस समय भी आते थे, मैं गया तब भी चोर आते थे उधर, लेकिन प्रभात के टाइम पे तो डाकू ऐसे ही आते रहते हैं, वो जंगल वाले डाकू, शहर वाले नहीं, जंगल वाले डाकू, वो आ गए। तो कोई उधर आता ही नहीं था, तो फिर भक्तों ने क्या किया, प्रभात को कहा कि गवर्नमेंट का एक गेस्ट हाउस होता है, जो क्या होता है उसको
सर्किट हाउस,
सर्किट हाउस प्रभुपाद के लिए वहां पर एक पैरा अरेंज करने का प्लेस था, अरेंज कर दिया तो प्रभुपाद को बोल दिया कि प्रभुपाद जी आइए भुवनेश्वर में आपके रहने के लिए, वहां पर हमने कमरा एक रखा है, वो जगह आपके रहने के लिए नहीं है, आप ये वहां पर अरेंज कर दिया कमरा। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि नहीं, मैं मेरे शिष्य गौर गोविंद के साथ ही रहूंगा वहां जंगल में, वही मिट्टी की कुटिया उसमें रहते थे, मिट्टी की कुटिया, और एक दो दिन नहीं 17 दिन तक रहे लगातार, 17 days निरंतर वहीं पर रहे प्रभुपाद। और फिर वहां पर उन्होंने वो क्या बोलते मंदिर का शिलान्यास किया उस समय 1977। सो प्रभुपाद वॉज फॉलो शोइंग द कंप्लीट रियल एग्जाम्पल ऑफ लास्ट श्लोक।
जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय हैं। इस अध्याय में पिछले श्लोक से अंतिम श्लोक तक मैया वेश मनो ये माम मुझ पर मन को स्थिर करके से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम नित्य सेवा इस धर्म को तब भगवान ने अपने पास तक पहुँचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पद में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है जिससे वह प्रमाणिक गुरु बनाता है और वह उससे श्रद्धा आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद होती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्ति की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इन सोपान पार नहीं करने होते। इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय ग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12 अध्याय की उसका भक्ति के तात्पर्य पूर्ण है।
सो भगवत गीता का जो बीच का जो सेक्शन है मिडल बीच का मध्य में ये यहाँ पर खत्म होता है। हमने पहले चर्चा किया था तो एक्चुअली श्लोक का स्पेशल ये है। इस श्लोक में कहा कि वेरी वेरी डियर वेरी वेरी डियर वेरी वेरी डियर क्यों कहते हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि टू इंडिकेट्स जो टू शब्द है वो क्या बताता है कि वो सो मच कवि ठाकुर दिस कैरेक्टरिस्टिक दैट अराइज वन फ्रॉम डिवोशन एंड फ्रॉम पीसफुलनेस आर नॉट गुड क्वालिटीज। दिस इज इन अकॉर्डेंस टू द स्टेटमेंट कृष्णा सेड इट्स ऑल अबाउट डिवोशन। सो इन दिस वर्ड इन केस इन आइडिया द डिवोटी डिस्क्राइब अप टू दिस पॉइंट ईच परफेक्ट कल्चर वन एस्पेक्ट ऑफ द पर्सनालिटी दोस मेंशन दिस वर्स हाउ आर डिजायरस इस श्लोक में 20वें श्लोक में जिसका वर्णन हुआ है वो आगे की बताएंगे सभी प्रकार के गुणों को 13 से लेकर के सभी ये सारे गुणों को विकसित करने का इच्छा रखने वाला है इसलिए वो बहुत प्रिय है। सो यद्यपि वो साधन की अवस्था में हो लेकिन फिर भी वो उन सभी से अच्छा माना जाता है जो दूसरे किसी मार्ग को फॉलो करते हैं। सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन साधन अवस्था में है ये सब गुण जो है उसको पूरा नहीं मिला थोड़ा थोड़ा है उसमें ये सब कुछ फिर भी वो सबसे अच्छा माना जाता है इसलिए उसको वेरी वेरी डियर टू मी ऐसा भगवान कहते हैं। सो इन बीच का जो 12वां 6 अध्याय है वो पूरा हुआ यहाँ पर विलोपटेंजेस और नाउ वी हैव स्मॉल एक्सरसाइज एनी क्वेश्चन बिफोर दैट। अनिकेत मीन्स जो निवास स्थान की चिंता नहीं करता है कभी उसको इधर रहने को देते हैं कभी उधर रहने को देते हैं वो आशा तो नहीं है नहीं मैं तो यहीं रहूंगा उसको जहां रहने को दे उसको सोने के लिए 2.5-6 जगह चाहिए बस स्नान करने के लिए थोड़ी जगह चाहिए
परित्यागी जो रिनाउंसर है, तो एक शेर बात का एक था कि जब डिवोटीज ने जब नए नए थे तो न्यूयॉर्क में जब प्रभुपाद जी आने वाले थे वहां पे, तो भक्तों ने उनका एक प्रोग्राम के लिए बहुत प्रचार किया हुआ था, जोर शोर से प्रचार किया हुआ था, पोस्टर्स बांटे, ये किया, सबको बुलाया था कि ये हमारे स्वामी जी आने वाले हैं, हमारे गुरु आने वाले, तब आइए। तो जिस दिन प्रोग्राम होने वाला था तब आए, प्रभुपाद जी भी आए और शिव प्रभुपाद, तो हार्डली ड्यूटीज के छोड़ के बहुत ही कम लोग आए थे एक्चुअली, तो ड्यूटीज बहुत ही निराश हो गए थे कि हमने इतना हमारे गुरु के प्रति सेवा करने का कोशिश किया है पर कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्लास प्रभुपाद ने दिया था, एक्चुअली टू एम्प्टी पूरा रूम खाली था, तो क्लास प्रभुपाद ने दिया था, तो ड्यूटीज बहुत ही उदास हो गए थे कि क्या कर रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कुछ उदास होने की कोई जरूरत नहीं, आपने देखा नहीं कि नारद जी आए हुए थे, ये आए हुए थे, वो आए हुए थे। तो श्री प्रभुपाद ये है कि आई मीन ही डिडंट ही वाज नॉट एट ऑल कंसर्न विद सक्सेस और फेलियर, वो अपना जो कर रहे थे गुरु के लिए सेवा कर रहे थे।
स्वामित्व की भावना से लगी प्रभुपाद जी ने इतने सारे मंदिरों का और सब निर्माण किया तो कभी ये नहीं था कि मेरे
द्वारा। ओके सो वी आर कंप्लीटिंग फास्ट।
ईर्ष्या भी प्रभुपाद को किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं था, वो सब संजोगों में स्वस्थ रहते थे,
कोई किसी की ईर्ष्या नहीं करती। यस और भक्त जो है तो जनरली ईर्ष्या से नहीं करते मुक्त होते। यस स्वामी
मतलब पवित्र, तो आंतरिक अगर बाह्य बे रीते पवित्र होने वाचे बाह्य रीते એટલે કે દિવસમાં બે વાર સ્નાન કરવું જોઈએ, વહેલાવું જોઈએ,
बहुत खर्च उठाया विदेश में जाके और उसमें कोई मतलब सुख और दुख में वो कोई फर्क नहीं होना है ऐसा सर अलग नहीं है मतलब उसमें भी जैसा था दुख में भी वो हर टाइम एक ही।
प्रभु जी करुणा करुणा में जैसे हम एक हम सॉन्ग और चंद्र बहुत करुणामय थे और उन्होंने जगाई मंदिर जैसे डिग्रेडेड लोगों का भी उद्धार किया था, तो सिमिलरली श्रील प्रभुपाद जी भी बहुत करुणामय थे जिन्होंने वी नॉर्मली से हिप्पीज को हैप्पीज बना दिया था और ऑल्सो इन प्रेजेंट जेनरेशन वेयर वी आर डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद उसमें जो मैंने जितना सुना उसमें ही सविनाश गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वो पूरे इस्कॉन के लिए हमेशा नरसिम्हा